फॉलो करके बोल रहा हूँ। उसमें से महाराज बताते हैं कि जो 15 दिन है कि बीमारी तो एक बहाना है, लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट है कि द्वारका में भगवान यानी श्री मंदिर में भगवान जी जगन्नाथ इतना व्यस्त रहते हैं कि कभी लक्ष्मी को और कभी ध्यान नहीं देते। जो लक्ष्मी जी हमेशा भगवान जगन्नाथ जी की सेवा में रहते हैं, उनके प्रति कभी ध्यान नहीं रहते। तो भगवान ने सोचते हैं कि चलो खास करके लक्ष्मी देवी को ये जो 15 दिन है उनको पूरा ध्यान दिया जाए। तो इसलिए पूरा सेक्युलर में केवल लक्ष्मी देवी के साथ है जो 15 दिन है, जब ये बीमार गिरते हैं तो लक्ष्मी देवी के साथ में रहते हैं भगवान जगन्नाथ। और वहां पर लक्ष्मी देवी उनको अपने पति के लिए जगन्नाथ जी के लिए बहुत सुंदर सुंदर डेलिशियस हर्ब्स मतलब मेडिसिनल फूड्स बनाते हैं। ऐसे नहीं कि जो बाकी जो भगवान तो बाकी दिनों में अलग अलग प्रकार के व्यंजन भोग खाते रहते हैं, लेकिन जो 15 दिन जो ओरिजिनली हर्ब्स के साथ जो भी फूड आइटम्स है वो इस दिन खिलाते हैं। खास करके अलग अलग प्रकार के जूसेस हर्ब्स का जो फूड है, लिप्स के सब्जी वगैरह जो भी है उसमें वो खिलाते हैं। और फिर भगवान जी 15 दिन तक एक ही घर में रह रहे के थोड़ा बोर भी हो जाते हैं, बोलते हैं कि अभी बहुत हो गया, अभी थोड़ा मैं घूम करके आता हूँ, अभी नगर परिक्रमा जब नगर भ्रमण, बोलते हैं नगर भ्रमण करके मैं आता हूँ। तो इसे जस्ट लक्ष्मी देवी को बोलते कि आप चिंता मत करो, मैं जस्ट नगर भ्रमण करके थोड़ा आ जाता हूँ। तो भगवान जी निकल जाते हैं, निकलना का मतलब है कि उनका वो रथ यात्रा है। और ये रथ यात्रा के बारे में लक्ष्मी देवी को कुछ पता नहीं रहता कि ऐसा बड़ा शोभा यात्रा के साथ भगवान जाके घूमेंगे, बट बोलते कि जस्ट मैं आ रहा हूँ, मैं अपना भाई और सुभद्र बलदेव के साथ थोड़ा जा रहा हूँ, घूम के आता हूँ। और घूमने के लिए रथ यात्रा के सब चले जाते हैं। फिर बाद में लक्ष्मी देवी वेट करते रहते 5 दिन तक जो भगवान नहीं आते, तो बोल के तो गए थे कभी तुरंत आ जाएंगे, लेकिन भगवान जी आ ही नहीं रहे अभी। तो लक्ष्मी देवी बड़े गुस्सा हो जाती है, तो बोलते कि अभी क्या हुआ करके जगन्नाथ जी को, तो फिर भाग करके आते गुस्से के मूड में, पूरा गुस्से होकर के श्री मंदिर से निकल करके आ जाते लक्ष्मी देवी। तो फिर बाद में उस फेस्टिवल को बोलते हैं कि हेरा पंचमी, हेरा यानी टू सी लॉर्ड जगन्नाथ, टू सी कृष्णा, क्योंकि पंचमी के दिन होता है इसलिए हेरा पंचमी बोलते हैं। तो उसी टाइम पे एक्चुअली मैंने एक बार उनके स्वयं दर्शन किया था इस लीला को पुरी में। तो जो इनका लक्ष्मी देवी का जितना सब पुजारी है वो सारे पुजारी क्या करते हैं, पूरा एक साथ माता लक्ष्मी देवी को पालकी में लेकर के आते हैं जगन्नाथ के पास। और जैसे गुंडीचा मंदिर में जाके प्रवेश करते हैं तो तुरंत जगन्नाथ जी के सारे पुजारी लोग उनका दरवाजा बंद कर देते हैं। तो वहां पर भी लक्ष्मी देवी गुस्सा हो जाते हैं, यानी उनका जो रिप्रेजेंटेटिव पुजारी लोग है गुस्सा हो जाते हैं। फिर बोलते हैं अरे हमने जगन्नाथ जी को दर्शन के लिए आए, देखने के लिए आए, फिर हमको दरवाजे ही बंद कर दिए। तो गुस्से होकर के वहीं से रिटर्न करके जगन्नाथ जी का जो रथ है उसको थोड़ा तोड़ते हैं, तोड़ करके उसमें से एक पार्ट है उसमें से और लेकर के वापस आते हैं। फिर बाद में क्या है कि जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते से वापस नहीं आते हैं, वो दूसरे रास्ते से आते हैं। क्यों, उनका शर्म आएगा ना, अरे मैं पतिदेव के दर्शन के लिए गया था, दर्शन भी नहीं हुआ, गुस्से में आ रहे, तो बाकी लोग पब्लिक देखेंगे, इसलिए उनका एक अलग रास्ता है, अलग रास्ते से छुप करके लक्ष्मी जी फिर उनका अपना जो पंडालों के साथ वो आते हैं, उसको बोलते कि हेरा पंचमी फेस्टिवल। और फिर बाद में हेरा पंचमी के बाद बीच में और कोई फेस्टिवल नहीं है, डायरेक्ट बहुड़ा रथ यात्रा होता है जो कि 9 दिन के बाद, 9 दिन के बाद उल्टा रथ जो बहुड़ा यात्रा बोलते हैं। तो जगन्नाथ जी फिर उल्टा जिस तरह से रथ में गए उसी तरह से इसे वापस आ जाते हैं, लेकिन उसका अगले दिन एकादशी रहता है। एकादशी के दिन उस दिन रथ में भगवान रहते हैं, अगले दिन शाम को पूरा सोना वेश होता है। सोना वेश होने के बाद भगवान जी पूरा जितना भी सब उनका रत्न भंडार में जितना भी सब सोने का अलंकार है उस दिन दिखाते कि मेरे पास कितना सोना है, देख लीजिए मेरा अपुलेंस क्या है, द्वारका का अपुलेंस क्या है। वहां पर भी पुजारी लोग भी उस दिन ही उनके पास जितना भी सब है वो भी दिखाते रहते हैं। सबसे ज्यादा तो जगन्नाथ जी से उनके पांडव लोग आप देखोगे, वो लोग अपना चेस्ट फैला करके दिखाते रहते हैं, हमारे को देखोगे तो इसको सुना वैसे बोलते हैं। तो फिर अगले दिन फिर पहुंडे होकर के भगवान जगन्नाथ जी रथ के श्री मंदिर में आ जाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट, जो आप लोग को जानते भी होंगे, फिर भी मैं जस्ट मेरा क्लेरिफिकेशन के लिए मैं थोड़ा क्लेरिफिकेशन क्लेरिफाई नॉट ग्लोरिफिकेशन। ये स्लो क्यों हो गया इतना? हाँ खुलेंगे। तो आज हम कुछ टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला तो कि जगन्नाथ जी का जो अपीयरेंस है, जो खास करके जो उनका रूप है, रूप का तीन स्टोरी, लेकिन तीन चीज का कंसेप्ट है, भगवान के रूप, जगन्नाथ जी का रूप ऐसा क्यों हुआ, और द आइडेंटिटी ऑफ दारू ब्रह्म जगन्नाथ, वो दारू के रूप में क्यों भगवान जगन्नाथ जी अवतार ले, और एब्सोल्यूट नेचर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉलरेंस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, और उनका एक दो पास टाइम लेंगे, हाउ लॉर्ड इज भक्त वत्सल, अपने भक्तों के लिए किस तरह से उन्होंने प्रोटेक्ट करते हैं, और हमें जगन्नाथ जी को एक्चुअली क्या प्रे करना चाहिए, और सनातन गोस्वामी कुछ स्तंभ माला लिखते हैं जगन्नाथ जी के ऊपर, जगन्नाथ जी के ग्लोरिफिकेशन के लिए, वो थोड़ा हम प्रार्थना सनातन गोस्वामी के द्वारा प्रार्थना सुनेंगे। तो पहले मैंने ये बताना चाहूंगा, अरे मेरा उड़ गया, खुल नहीं रहे, एक मिनट। मैंने पीडीएफ रखा था, नहीं नहीं पीडीएफ में रखा था मैंने, नहीं नहीं पीडीएफ रखा था मैंने, पीडीएफ उड़ गया कहीं, पीडीएफ रुको नहीं, रुको नहीं, नहीं रुको नहीं, उसमें रहेगा, इसमें रहेगा, क्या ना पता नहीं अचानक से बंद हो गया। नहीं नहीं लैपटॉप की बात नहीं, सॉरी। उसमें के प्रोवाइड स्टेटमेंट है, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया। सॉरी खुल गया। तो जगन्नाथ जी का जो टेम्पल के ऊपर प्रभुपाद ने कोट लिखा है, तो जगन्नाथ स्वामी इज ए यूनिक डीटी फॉर्म ऑफ भगवान श्री कृष्ण वॉज स्पेशली अपियर्ड इन कलियुगा टू डिलीवर द मोस्ट फॉलन सोल्स. लॉर्ड जगन्नाथ एक्सेप्ट्स वर्शिप फ्रॉम वन एंड ऑल. इन 1970s लो प्रभुपाद इंस्ट्रक्टेड ए डिसिपल दैट व्हेन एस्टैब्लिशिंग ए न्यू टेम्पल वी फर्स्ट जस्ट वर्शिप जगन्नाथ स्वामी. After some time, when everything is running smoothly, we can introduce the more demanding worship of Radha and Krishna Murtis. The deities worshipped in ISKCON temples are Jagannath Swami with Balram and Subhadra and Radha Krishna. When we first start a temple, we start with Jagannath Swami. My Guru Maharaj recommended temples of Jagannath in these countries, especially outside of India. So I was inspired to establish first of all Jagannath Swami because he is kind even to the mlechhas. Then when there is opportunity, I establish Radha and Krishna Murtis. Shrila Prabhupada ke letter hai. To isliye Jagannath Swami hamara Gaudiya Vaishnav ke liye bahut important cheez hai, kyunki Jagannath ke liye कोई भी वर्शिप कर सकते हैं, इसके लिए कोई ज्यादा रीति रिवाज की जरूरत नहीं है. इवन आज प्रभुपाद और एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि खासकर उड़ीसा और बंगाल में ज्यादा लोग मच्छी खाने वाले हैं, और भगवान इतना दयालु है, कृपालु है कि इवन आज कोई कितना भी नीच स्तर के हो, कोई भी उसका क्वालिफिकेशन नहीं हो, कुछ भी खाते. इवन आज पांडा लोग भी, उन लोग भी घर में मांस मछली से भी खाके आकर भी कुकिंग करता, आप लोग भी सुना होगा. अब और भी एक ये है कि क्यों पांडा लोग इसलिए मांस मछली जो खा के आते हैं ताकि उनका कोई भी बनाते टाइम कोई भोग के प्रति उनका अट्रैक्शन ना रहे, ये भी एक कंसेप्ट है. ताकि वो कुछ खा के आया होगा पेट भर के, उसको कुछ थोड़ा ध्यान भी नहीं रहेगा मैं क्या बना रहा हूँ क्या नहीं है, वो आराम से भगवान की क्या बना रहा हूँ, मतलब कि उसे खाने का मूड नहीं जाएगा उसमें कि मेरे को वो खाने करके. तो उस कंसेप्ट कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली प्रभुपाद बोलते हैं कि ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई भी ये कर सकते हैं. एक बार जगन्नाथपुरी यात्रा में आप लोगों को शायद याद रहेगा, पुरुषोत्तम महाराज, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज एक बार बता रहे थे कि ओडियन लेडी वो जगन्नाथ जी के भक्त है, लेकिन उसको ऐसा लगा कि जगन्नाथ जी अभी हमेशा मंदिर में उनके जो प्रसाद भोग लगता है उसमें पूरा मीठा रहता है, घी रहता है, ये रहता है. घी और मीठा से क्या होता है, मुंह बंद जाता है ना, ज्यादा हम कुछ खाने का इच्छा नहीं रहेगी. तो इसलिए खा खा के वो शायद वो पक गए होंगे, चलो मैं उनके लिए, आप लोगों को मालूम है कि जो मछली को उसको सुखा देते हैं, ओके, ड्राई मछली को सुखा देते हैं, उसको मसाला डाल के अच्छा सा कड़, मतलब तीखा वाला मसाला डाल के उसको बनाते हैं. उड़ीसा में उसको बोलते हैं सुखुआ, ओके. उसको क्या खाने से ना, जो बचपन में जो खाया गया उड़ीसा में, तो उनको बड़ा टेस्ट है उसमें. मैं शुरू में खाया था लेकिन वो बड़ा टेस्टी है, उसके बाद थोड़ा सल्टी रहता है और उसमें बड़ा टेस्ट है. आपको ऐसा लगेगा कि वो खाने के बाद फिर आपको और क्या बोलते थे, खाने के और भूख बढ़ जाती है. तो उसको लगा कि भगवान जी अभी हमेशा घी और मीठा खाते रहते हैं, चलो भगवान के लिए मैं ये ऑफरिंग के लिए लेके जाता हूँ. तो ऐसे अपना साड़ी में बांध करके मंदिर के अंदर एंट्री कर रहा था, तो सारे पुजारी लोगों उसको रुका है, बोले तुम क्या लेके जा रहे हो साड़ी में बांध करके. बोले उसने दिखा नहीं रहा था, तो पंडाल जबर से उससे खींच ले, तुम दिखाओ क्या लेके जा रहे है. तो उसने खोल करके देखा तो सब ड्राई मछली है, सब पूरा सब मसाला डाल के, जाल डाल के सब बना हुआ है. तो बोला कि मछली तुम अंदर कैसे लेके जा सकते हो. बोला कि तो क्या हुआ, भगवान जो खिलाने का. बोला भगवान को ये सब नहीं खिलाते. बोला क्यों नहीं खाएंगे, आप लोग जब भी आपका मुंह बांध जाए, मतलब कि स्वीट खा के बांध हो जाए, थोड़ा तीखा खाते कि नहीं, तो भगवान को तीखा भी देने के लिए थोड़ा अच्छा तीखा चीज है, सल्टी और तीखा भी है, तो इसको भगवान को खिलाते हैं. तो उसको फिर भगा देते हैं. और तो फिर बाहर आकर के वो बूढ़ी औरत जो है बहुत रोती है, भगवान मैं आपके लिए लेकर के आया था, आपने लिया नहीं मेरे से. तो भगवान वहीं पर बोला कि मतलब उसको सुन लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम इधर आके रात को लेकर आ जाओ, मैं तुमसे ले लूंगा. तो भगवान जी फिर उधर अरुण स्तंभ के पास खड़े रहते हैं. भगवान जी जैसे अपना भक्त सालवे का नारियल भी लिए थे, ऐसे मछली भी लेके गए थे. ये एक्चुअल लोकल स्टोरी है, ये किसी इसमें नहीं है। तो भक्त प्रसन्न महाराज बोले थे कि किसको बोलना मत कि भगवान जगन्नाथ जी को इन लोग भी मछली खिलाते हैं। तो भगवान जगन्नाथ कुछ देखते नहीं है, कोई कुछ भी ऑफरिंग करते हैं, लेकिन भगवान एक ही चीज देखते कि भाव उसका क्या है, वो क्या के दे रहा है क्या नहीं, वो सब देखते नहीं है। इसलिए वो भावग्राही जनार्दन है, भगवान उसको ही केवल एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं भगवान जाके मछली को खाते हैं, बट उसका इंटेंशन था कि भगवान को सेवा करने के लिए, इसलिए भगवान किसी से भी सेवा लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो हम अभी तीन कंसेप्ट जो उनका आविर्भाव के ऊपर, जो ऐसा रूप कैसा हुआ और भगवान के मंदिर कैसे बने, इसके तीन हिस्ट्री है, तीन हिस्ट्री पर हम चर्चा करते हैं। आप लोग सुना भी होगा, फिर भी से मैं इसको दोहराता हूं। तो जगन्नाथ जो डेटी है वो सत्ययुग में स्नान पुण्यमी के दिन एक्चुअली आविर्भाव हुए थे। सत्ययुग में एक राजा थे, एक्चुअली मैं कई इसमें से रेफर किया, कहीं भी युग के बारे में लिखा नहीं है इंद्रदेव ने कौन से युग के थे, ये जो लीला हुई थी कौन से युग में हुआ था, इसमें की रेफरेंस नहीं है। लेकिन महाराज क्लियरली इसमें सत्ययुग लिखते हैं, इनमें और भी दो तीन लेक्चर सुना, लेकिन कहीं भी एक्चुअली मेंशन नहीं है इंद्रदेव ने कौन सी युग में इस लीला हुई थी। चलो जो भी है, सत्ययुग में इंद्रदेव करके एक राजा थे, उनका जो पूरी जो साम्राज्य है वो पूरी अच्छी तरह से पालन कर रहे थे, बहुत रिलीजियस थे और खास करके वो विष्णु के बड़े भक्त थे। उनको ऐसा कि एक दिन इच्छा हुई कि मुझे भगवान की साक्षात दर्शन करने चाहिए, साक्षात रूप से मेरे को ऐसे के भगवान के दर्शन करवा सकते हैं। तो उसी टाइम पे एक पिलग्रिमेज, मतलब कि वहां से उनके दरबार में आए थे और उन्होंने ऐसे बोले कि अभी अभी जस्ट मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी से आ रहा हूं, वहां पर मैंने देखा कि साक्षात देवी देवता आकर के भगवान नीलमाधव के दर्शन करते हैं और सुंदर प्रेयर्स गाते रहते हैं, और मैं भी वहां पर विटनेस था। मेरे को कोई भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्रेम भाव नहीं था, लेकिन सारे देवी देवता और उन वहां के जो लोकल्स लोगों को देख करके, जो लोग जिस तरह से उन लोग पूजा करते हैं, तो भगवान कृष्ण के प्रति मेरा भी प्रेम बढ़ गया। तो तुरंत जैसे खबर इंद्रदेव महाराज को मिलता है, तो इंद्रदेव महाराज उनके मंत्रियों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि कौन मुझे इस जगह के बारे में खोज कर सकता है। तो वहां पर जो चतुर मंत्री थे विद्यापति, उनको ये कार्यभार सौंपा गया, बोले कि विद्यापति आप जाइए, इस काम को आप ही संभाल सकते हैं। तो विद्यापति तुरंत वहीं से फिर निकल जाते हैं उत्कल की ओर, और फिर जो उन्होंने जो भी हिंट्स बताए थे कि नीलाचल के पर्वत है, पर्वत के ऊपर नील माधव वहां पर वर्शिप होते हैं, तो तुरंत विद्यापति ने नीलाचल धाम में आ गए और वहां पर उन्होंने इंक्वायरी किया कि नील माधव कहां पर है। तो नील माधव की जो एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर होता है वो कोई नहीं बता पा रहे थे। तो उन्होंने फिर वो एक्चुअल जो एरिया था ट्राइबल एरिया था पूरा, सब क्या बोलते हैं सिलू ट्राइब के जो लोग रहते थे वहां पर का, उनका जो एक सवल ट्राइब का जो सिडुल ट्राइब का जो इंचार्ज थे उनका नाम था बिस्वा बसु। तो बिस्वा बसु को बोले कि उनसे जाके मिले विद्यापति ने और उनसे बोले मुझे यहाँ पर मैंने सुना कि नील माधव की बहुत अच्छा से सेवा पूजा हो रहा है, जिसके दर्शन के लिए स्वयं देवता लोग भी यहाँ पर आते हैं, क्या मुझे उनके दर्शन करवा सकते हैं। तो बिस्वा बसु ये बात सुन करके तुरंत आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उनको पहले से भी भविष्यवाणी हुई थी एक राजा इंद्रदेव करके राजा यहाँ पर आएंगे और आपका भगवान को यहां से लेकर के जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो सुन करके खुश हो गया कि अच्छा हुआ कि किसी राजा ने इसकी सेवा करेंगे, लेकिन उनको दुख हुआ कि मैं अभी सेवा की जो मेरा सेवा है वो छूट जाएगा, मैं सेवा नहीं कर सकता हूं। तो उनका मन में दुख था, तो इसलिए बोले कि ठीक है मैं आपको दर्शन करवा दूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं वहां पर आपको ऐसे लेके नहीं जा सकता हूं। एक्चुअली उससे पहले भी एक्चुअली उन्होंने एक्चुअली इनकार कर देते हैं, वो एक्चुअली उनका पिताजी जो विश्वास है वो इनकार कर देते हैं। तो विद्या कुछ कुछ जगह पे ऐसा ही वर्णन है कि वो डायरेक्ट बोलते हैं ठीक है आपको चलो मैं दर्शन करवाता हूँ, कुछ कुछ जगह मेंशन है, दोनों चीज का रेफरेंस लिया, कुछ जगह पे ऐसे मेंशन है कि वो मना करते हैं, बोलते कि नहीं मेरा भगवान चले जाएंगे तो दर्शन नहीं करवाते हैं। फिर विद्यापति एक प्लान योजना बनाते हैं कि मुझे दर्शन करना है तो कैसे करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर उनके जो बेटी है ललिता उनसे शादी का प्रस्ताव रखते हैं, बोले कि मैं आपका बेटी से शादी करना विवाह करना चाहता हूँ। तो सभी से विश्वास सुनकर खुश हो जाते हैं, बोले ठीक है कर सकते हैं। तो ऐसा कोई क्योंकि अपर कास्ट है ब्राह्मण है और ये तो सवर कास्ट के हैं, तो क्या अच्छा है। तो शादी हो जाते हैं, फिर अपने पत्नी ललिता को बोलते हैं कि मैं मुझे मेरा आपसे शादी करने का एक ही प्रयोजन है कि मुझे नील माता को दर्शन करना है। तो आपका पिताजी तो मानते नहीं है लेकिन आप कैसे भी करके मुझे वो जगह मुझे बताइए और उनको मुझे नील माता को दर्शन करवाओ। तो बोले कि मैं पिताजी का बात को इनकार नहीं कर सकता हूं, लेकिन आज पत्नी का कर्तव्य के नाते मैं आपको ये वचन देता हूँ, ठीक है आपको मैं करवा दूंगा, ये भी मेरा कर्तव्य, पिता का भी कर्तव्य पालन करता हूँ और पति का भी कर्तव्य पालन करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको दर्शन करवाऊंगा, लेकिन आपको मैं कैसे लेकर के जाऊंगा, ब्लाइंड फोल्ड लेकर के जाऊंगा, आपका आंखों में पट्टी बांध करके लेके जाऊंगा ताकि आप जागा सेकेंड बार कभी आप जा नहीं सकते उधर। तो फिर पट्टी बांध करके आंखों में फिर उस जगह पर लेके जाते हैं, लेकिन विद्यापति बड़ा चतुर थे, मंत्री तो है ही, तो क्या करते हैं साथ में एक एक गामछे में थोड़ा मस्टर्ड सीड्स वो बांध लेते हैं और उसको कंधे को ऐसे पीछे डाल देते हैं और इसमें छोटा सा के छिद्र होल कर देते हैं और रास्ते में जिस रास्ते से जाते रहते हैं क्या होते हैं उसमें से थोड़ा 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 सीड्स रास्ते में गिरते हुए जाते हैं। तो फिर इस तरह से वो नीलमाधव की ओर जाते हैं, फिर बाद में वो उनका नीलमाधव का दर्शन होते हैं और नीलमाधव को दर्शन करके पूरा भावीभोर हो जाते हैं, भगवान की इतना सुंदर रूप है, उसका दर्शन करके फिर उनका ग्लोरिफिकेशन करते कि आप सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ है, आप यहाँ पर बड़े अच्छे से आप सेवा पूजा पा रहे हैं और ये मौका अगर राजा इंद्र दोगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, ऐसा करके प्रार्थना करते हैं विश्वावसु और फिर वहां से निकल पड़ते हैं। तो फिर और तुरंत ललिता से पत्नी से परमिशन लेकर के वो अवंती की ओर चले जाते हैं। फिर अवंती में राजा इंद्रमन को ये मैसेज पहुंचाते हैं, बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। तो इंद्रमन महाराज अपना सारे सेना के साथ पूरा सुरक्षा के साथ पूरा अरेंजमेंट के साथ फिर आते हैं पुरी में और जैसे ही आते हैं एक्चुअली उनको न्यूज मिलता है कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो राजा भी उनको भी वार्निंग करते हैं कि जो उड़ीसा के जो उत्कल के उस टाइम जो राजा रहते थे वो भी वेलकम करते हैं, वो भी पूछते हैं आपका आने का क्या अभिप्राय है। तो बताते कि ऐसा ऐसा मुझे नील माधव का दर्शन करना है। तो बोले कि ठीक है लेकिन यहाँ पर अभी के समय पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और जैसे ही विद्यापति को तो रास्ता मालूम था, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जा करके रिटर्न आते आते वो बारिश का सीजन चला गया था और जैसे बारिश हुआ तो क्या हुआ मस्टर का साढ़े सीट से पेड़ भी आ गया था, तो उसको एग्जैक्टली रास्ता पता चल गया कि कौन से रास्ते में जाना है करके, पूरा जंगल था उस टाइम पे ना, तो उस रास्ते ही पता चल गया था उनको। तो उसी रास्ते से उनको फिर लेके गए, जैसे आकर के उसी एग्जैक्ट नीलाचल जो जहां पर जो अपना कल्प वृक्ष के नीचे जहां पर नीलमाधव पूजा होते थे वहां पर पहुंचते से पहले ही बहुत बड़ा तूफान आया और इधर सब अस्त्र व्यस्त हो गए, पूरा मतलब कि विग्रह भी वहां से उभान हो गए और उनका नीलमाधव से दर्शन नहीं हो पाया। तो वहीं पर इंद्र महाराज पूरा एकदम रोते पड़े कि मैं कितना अनफॉर्चुनेट हूं कि मैं मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो पाया। तो फिर वहां पे रोते रहते हैं कि मैं कितना बड़ा महापापी हूँ, मेरे वजह से भगवान अंतर ध्यान हो गए जो भी। तो भगवान से उतने प्रार्थना करने लगे तो वहां पर फिर नारद मुनि आगे पहुंच जाते हैं। नारद मुनि बोलते हैं कि क्या बात हुई है, बोले ऐसा ऐसा है। नारद बोलते बोलते कि अभी अभी जस्ट मुझे ये खबर मिली है कि भगवान नीलमाधव जो यहाँ पर पूजा पाते थे अभी नहीं दर्शन देने वाले हैं, अगर आप भगवान के दर्शन करना चाहते हो तो आपको क्या 1000 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान को दूसरे रूप में पूजा प्राप्त करना चाहते हैं। अभी इस नीलमाधव के रूप में अभी दर्शन नहीं देंगे। तो आप अभी क्या कीजिए, यहां पर 1000 वर्ष तक आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए। तो इंद्र मारो ठीक है। तो फिर तब तक नारद मुनि ने और भी बोले कि यहां पर पहले नीलमाधव के साथ मैंने यहां पर मेरे जो प्रिय विग्रह हैं नरसिंहदेव, उनको भी मैं यहां पर पूजा करता था, लेकिन वो नरसिंहदेव अभी यहां पर नहीं है, वो अभी मेरे पास स्वर्ग में है। तो बोलते कि आप यहां पर ये करते रहो, एक नरसिंहदेव के भी मंदिर भी बनाओ और ये अश्वमेध यज्ञ भी करते रहो। तो बीच में फिर जाके नारद मुनि जाते हैं और स्वर्ग से अपना नरसिंहदेव जो विग्रह लेकर के आते हैं, और फिर बाद में इंद्रदेव महाराज को बोलते हैं कि आप जो मंदिर बनवाया वो मंदिर में इस नरसिंहदेव को स्थापित कीजिए। आपको शायद देखा होगा आप लोगों ने गुंडीचा मंदिर के पास में थोड़ा राइट साइड में एक नरसिंहदेव का मंदिर है, देखा आप लोगों ने। वो एक्चुअली नरसिंहदेव जो है किसकी पूजित विग्रह है, नारद मुनि का। नारद मुनि से नरसिंहदेव को पूजा करते थे, जो कि इंद्र महाराज के द्वारा मंदिर बनवाया गया था। फिर जब उनका 1000 अश्वमेध यज्ञ फाइनल होता है, ऑन द फाइनल सैक्रिफाइस, वहीं पर फिर बाद में उनको ये खबर मिलती है कि उनके जो प्रजागण है, उनके जो सिटीजन्स है, वो आके महाराज को इन्फॉर्म करते हैं कि अभी समुद्र में एक बहुत बड़ा लकड़ी है, वो यहाँ पर मतलब कि समुद्र से आया है, और उस जो लकड़ी जो है सुंदर और सुगंधित है, पूरी तरह से फ्रेग्रेंट है, उससे पूरा मतलब कि इतना फ्रेग्रेंस आ रहा है कि कोई मतलब कि यकीन नहीं कर सकता है, चारों तरफ उसका सुगंध से पूरा भर जाता है। तो बोलती क्या लकड़ी है करके, फिर बाद में इंद्र महाराज सारे सेना को लेकर के जाते हैं, बहुत बड़ा लकड़ी थी वो, और लकड़ी को कलट करके लेके आते हैं, और फिर बाद में आकाशवाणी होता है कि ये जो लकड़ी है कोई साधारण लकड़ी नहीं है, इससे भगवान की विग्रह बनने वाला है, आप जिसके लिए इतना अश्वमेध यज्ञ किया है ये उसका फल है, ये फल के स्वरूप से आपको ये लकड़ी प्राप्त हुई है, आप इसी लकड़ी से विग्रह बनवाइए। तो इन महाराज सोचते कि मैं कैसे विग्रह बनवाऊं, बोले कि आपको विग्रह बनने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहां पर कुछ समय के बाद एक ब्राह्मण आएगा और वही सॉरी विश्वकर्मा आएंगे और यहां पर आपका विग्रह बनाएंगे, लेकिन एक शर्त है, जब वो विग्रह बनाएंगे तब तब आप उनको 21 दिन तक उनको डिस्टर्ब मत कीजिएगा। तो फिर उनको एक रूम में छोड़ देते हैं, जो कि गुंडीचा मंदिर का जो मेन जहां पर अभी जगन्नाथ जी जाकर बैठते हैं, बोलते हैं कि एक्चुअली वो पहले उनका मंदिर बनाने से पहले, गुंडीचा मंदिर बनाने से पहले वहां पर उनका एक छोटा सा प्याले जैसा था, एक रूम जैसा था, वहीं पर उनको एक रूम के अंदर ये सब मतलब कि कार्विंग हुआ था। तो विश्वकर्मा ने जो एक ब्राह्मण के रूप में आए थे एक्चुअली, उन्होंने फिर उनको ये कार्यभार दिया गया, उन्होंने पूरा इस विग्रह बनाने के लिए पूरा कार्विंग किया था। तो फिर उनका कंडीशन था क्या कि 21 दिन तक मैं बनाते रहूंगा, 21 दिन तक तुम इसमें डिस्टर्ब मत करो। तो हर रोज जब बनाते थे और दिन रात तो बनाते थे, लेकिन वो जो क्या बोलते उसको जो ठुक ठुक के अगर ये करते हैं हथौड़ी और चिजल का जो साउंडिंग है उसका ठक 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 आवाज आता था अंदर से। तो गुंडीचा रानी जो कि इंद्र महाराज की जो पत्नी है वो हर रोज आके सुनते थे आवाज कि कुछ तो आवाज आ रहा है, मतलब कि बन रहा है वो। लेकिन जस्ट दो दिन पहले बोला गया था 21 दिन है, लेकिन जस्ट दो दिन पहले ऐसा हुआ कि 19th डे आई थिंक वो कुछ आवाज नहीं है, फिर 19th या 18th डे को कुछ आवाज नहीं आ रहा था। तो गुंडीचा रानी को लगा कि शायद वो बूढ़ा था, शायद इतना दिन से खाया नहीं, वो मर तो नहीं गया अंदर, अरे क्या है कि कोई मूर्ति बना रहे है और मर भी जाता है ना, वो मूर्ति एक्चुअली पूजा करने योग्य नहीं रहता है। तो फिर कैसे वो मूर्ति कैसे पूजा होंगे फिर, तो भी तो अशुभ है। तो उनको पूरा ये और क्या बोलते इसको, विचलित हो गए, मतलब सहन नहीं कर पाए। तो तुरंत जाकर के उन्होंने वो दरवाजा को खोल दिया, और जैसे खोल दिया भगवान जी का सुरभ जो सुंदर रूप है, जगन्नाथ जी और बलदेव और सुभद्रा तीनों अपूर्ण रूप से वहां पर प्रकाशित थे। वो रूप ऐसा था कि उनका कोई हाथ नहीं पाँव नहीं है, उनका आंखें बड़े बड़े, ऐसा आश्चर्य रूप देख करके वो भी चकित हो गए कि शायद मैंने तो गलती नहीं कर दिया कि जो बोला गया था 21 दिन, 21 दिन से पहले मैं खुलवा दिया, इसलिए भगवान कैसा आश्चर्य रूप, आश्चर्य प्रकार के रूप आ गया। तो उनको थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन बाद में आकाशवाणी ऐसे हुई कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही भगवान की इच्छा थी, यही रूप कलयुग के लिए पूजा प्राप्त करेंगे, यही रूप भगवान कृष्ण का यह जगन्नाथ रूप है, इस रूप में सारे जनता को, सारे भक्तों को इसी रूप में वो दर्शन देंगे और सबको उद्धार करेंगे। तो ये हो गया पहला स्टोरी कि भगवान के रूप कैसे आया। ये एक्चुअली पहले स्टोरी क्या है, ये एक्चुअली भगवान की इच्छा से हुई है। ना तो कुछ लोग बोलते हैं कि गुंडीचा रानी की वजह से मंदिर सॉरी विग्रह जो अधूरा बना गया, ऐसा नहीं है, ये भगवान की इच्छा थे इसी रूप में। सेकेंड कंसेप्ट ये है जो कि रूप गोस्वामी का ललित माधव में स्टोरी वर्णन है कि जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे तो हमेशा राधे राधे गोपी, हे राधे हे कर, हे राधे करके चिल्लाते थे। वो इतना चिल्लाते थे, चिल्ला चिल्ला के कभी कभी मूर्छित हो जाते थे, रोते रहते थे, तो उनको कोई भी सांत्वना नहीं दे पा रहे थे। तो सारे रानियां जो है विचलित हुआ करते थे कि कृष्ण को हम कैसे सांत्वना करेंगे, कौन इनको ऐसे कि सांत्वना करवा सकता है। तो तुरंत वहां पर नारद मुनि, उद्धव और बलराम तीनों मिलकर सोचे कि इसका कोई समाधान होनी चाहिए। हर रोज ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन, एवरी डे इन द मिड नाइट ऑल्सो कि समटाइम्स वेक अप अंड क्राइंग हे राधे हे राधे हे राधे, और फिर अनकंशियस के मूर्छित हो जाते थे। तो कोई सहन नहीं कर पा रहे थे क्यों हो रहा है। तो तीनों विचार किए कि क्या करना चाहिए। तो ऐसा कंक्लूजन उनको मिला कि अगर नारद मुनि ब्रज लीलाओं के बारे में अपने वीणा से गान करेंगे तो शायद कृष्ण जब ब्रज लीला को श्रवण करेंगे शायद वो इस स्टेट से बाहर आ सकते हैं, जो मूर्छित अवस्था से वो निकल सकते हैं। लेकिन नारद मुनि ने बोले कि अगर मुझे ब्रज के लीला गान करना है तो ये गान सुन करके, ब्रज के लीला सुनते ही कृष्ण और यहां नहीं रहेंगे, कृष्ण द्वारका से तुरंत कहां वृंदावन चले जाएंगे। अच्छा वृंदावन जाएंगे वहां पर सारे गोपियों के देखेंगे कि गोपियां किस तरह से उनके विरह में किस तरह से रो रो के मर पड़े पूरा। तो उनकी अवस्था देख करके कृष्ण वापस और द्वारका नहीं आएंगे, कृष्ण हमेशा के लिए वृंदावन में रह जाएंगे। तो इसलिए ये हमारा के ये सिचुएशन हम कैसे डील करेंगे। तो ये सोच करके नारद मुनि ने के प्लान बनाया, बोले कि देखिए आप एक काम कीजिए। किसको बोलते हैं, पहले उद्धव जी को बोलते हैं कि उद्धव आप जाइए वृंदावन, वृंदावन जाकर के सारे गोपी नंद यशोदा सबको एक खबर पहुंचाइए कि कृष्ण अभी तुरंत आ रहा है। तो उद्धव जी बोले कि मैंने पहले वृंदावन गया था सबको सांत्वना देने के लिए ये बात मैंने बोला भी था कि कृष्ण आ रहा है, कृष्ण आ रहा है, आप रोना धोना मत कीजिए, आप शांत हो जाइए। लेकिन उनको तो मैं शांत नहीं करवा पाया, लेकिन मैं भी उनका प्रेम में मैं भी पागल हो गया, मैं भी रोने पड़ा। इसलिए मैं वहां से तुरंत वहां से भाग करके ये खबर कृष्ण को देने आया। कृष्ण को सारी खबर मैंने बताया। कृष्ण बोलते कि मैं अब जाऊंगा। 50 साल हो गया, कृष्ण अब तक नहीं गए। अगर फिर से मुझे आप भेज रहे हो कि अगर ये बात मैं बोलूंगा कि कृष्ण आ रहे, कोई मुझे विश्वास करेगा? बोले तुम एक झूठा हो, तुम तो बोल के गया था 50 साल हो गया, तुम्हारे कृष्ण अभी तक नहीं आए। कभी देखा अपने हम किस तरह से अपना जीवित अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं? उद्धव बोलते कि मैं नहीं जा सकता हूं। तो नारद मुनि बोले कि बलराम आप जाइए, आप तो कृष्ण के बड़े भाई हो, आप जाके वृंदावन वाले वासियों को बोलोगे, शायद आपकी बात मान लेंगे। तो बोले कि सेम बात ऐसे मेरा भी हुई थी। उद्धव जिस प्रकार सांत्वना देके गए थे वो भी नहीं कर पाए, और मैं भी ऐसे भी हुआ था, मैंने भी सांत्वना दिया था कृष्ण आ रहे, लेकिन कृष्ण को आकर मैं कितना बार धमकाया, तुम जाओ एक बार देख कर क्या हो, ब्रजवासी का हालचाल क्या है, किस तरह से अपना जीवन निर्वाह कर रहे है। लेकिन वो भी नहीं गया, और फिर वो जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि कृष्ण आ रहे हैं, आप थोड़ा तैयार ही रहो, क्या मेरे ऊपर विश्वास करेंगे वो लोग? संभव नहीं है। तो वहां पर ये सारे बात कौन सुन रहे थे? सुभद्रा माई। सुभद्रा में बोले कि और आप लोग नहीं जा सकते, ये काम मैं कर सकती हूं। बोले कि मैं तो कहीं वृंदावन नहीं गया हूं, और जाकर और मैं भी एक नारी हूं, नारी की जो असह पीड़ा है, वेदना है, मैं समझ सकता हूं, और उनको मैं सांत्वना दूंगी, शायद मेरे बात में वो भरोसा रखेंगे। तो सुभद्रा में फिर निकल जाते वृंदावन की ओर, और बोलते कि मैं जाकर के यशोदा मैं के गोद में बैठा करके उनको सांत्वना दूंगी, ऐसे ऐसे बात बोलेंगे, श्रीमती राधिका को सांत्वना दूंगी, सारी गोपिया के भी बोलूंगा कि कृष्ण आ रहे, तो मेरा विश्वास ले लेंगे। तो सुभद्रा में चले जाते वृंदावन में, सारे गोपियों को मिलते हैं, सारे को मिलते हैं, तैयारी करते हैं कि कृष्णाव मैं जो बोल रहा हूं ये मेरा 100% राइट है, क्योंकि कृष्ण को मैंने देखा है, अभी वो तैयारी चल रहा है और रथ में जस्ट वो आ रहे हैं, मैं जस्ट थोड़ा आपको आगे आ करके मैं आपको संवाद दे रहा हूं, इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरा बड़े भाई बलराम जी झूठ बोल के गए, झूठ बोल के गए कृष्ण ने है, लेकिन इस बार कृष्ण को मैं पहले ही बुला करके लेकर के आया हूं, वो आ रहे रास्ते में, जस्ट आप तैयारी रहिए, लेकिन आप जो वातावरण है उसी वातावरण से थोड़ा ऊपर आइए, आप रोना धोना मत कीजिए, कृष्ण के आने का तैयारी, उस तैयारी का उत्सव मनाइए। तो फिर ऐसे वृंदावन में इस तरह से सारे गोपियों को इकट्ठा करके सुभद्रा मई सबको सांत्वना दे रहे थे, तब उस टाइम पे नारद मुनि अपने वीणा से वृंदावन के माधुर्य लीला के, राधा कृष्ण के जो प्रेम लीला है उनको बताते हैं। जब बताते हैं तो कृष्ण जिस तरह जैसे ही राधा रानी के नाम सुनते हैं, ब्रज की एक एक गोपियों के नाम सुनते हैं, एक एक लीला को गान के हिसाब से श्रवण करते हैं, तुरंत मूर्छित अवस्था से निकलकर त्रिभंगी रूप में खड़े हो जाते हैं और वहां पर ढूंढते हैं कि मेरा बांसुरी किधर है, मेरा बांसुरी किधर है, क्या राधिका मेरा बांसुरी ले लिया, कौन मेरा बांसुरी लिया है? तो इसे ढूंढ रहे थे, फिर बाद में थोड़ा सा देखते कि अरे यहां पर कौन है, थोड़ा सा एक्सटर्नल कॉन्शियस को आते हैं, देखते कि यहां पर उद्धव जी है, उद्धव आप यहां पर वृंदावन में क्या कर रहे हो? फिर बोलते बाद में देखते हैं कि अरे ये बलराम भाई, बलराम आप यहां पर क्या, आप तो कभी इस जगह पर कभी आते नहीं, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? फिर बाद में उनको थोड़ा भया चेतना जब आती है तो देखते कि ये वृंदावन में नहीं हूं, मैं द्वारका में हूं, लेकिन ये वृंदावन के ये जो सीन है, जो वातावरण आया कैसे, ओ नारद मुनि, आप, आपका बीना गान इधर कैसे हो गए? तो जैसे बोलते कि तो तुरंत इज लाइक इन एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस एंड इंटरनल कॉन्शियसनेस बोथ साइमेंटली मैनिफेस्ट इन कृष्णा, क्योंकि वो वृंदावन की गान सुन करके वृंदावन के अंतर अंतर चेतना जो है वृंदावन की और बाह्य चेतना जस्ट द्वारका में इन लोगों को देख करके बाह्य चेतना में देखते हैं, लेकिन वृंदावन के मूड में ऐसे हिलते डुलते हैं। इसलिए जगन्नाथ मंदिर से जब भगवान बाहर निकलते हैं तो उनको बोलते हैं कि पहंडे, पहंडे यानी जंपिंग स्टेप बाय स्टेप, स्विंग टू एंड फ्रो, आगे पीछे ढोलना। वो जो क्यों ऐसा क्यों डायर क्यों खींच के लेके नहीं आते, क्योंकि भगवान पूरा भी वृंदावन के मूड में आ गए लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि बाकी बाजू में जो सराउंडिंग है वो द्वारकावासी है। तो इसलिए उसे मूर्छित में आ गए, लेकिन इसको बोलते कि हायर स्टेज से जो रिवील होता है धीरे धीरे, तो तुरंत फिर सभी द्वारकावासी उनको रथ के ऊपर चढ़ाते हैं और बोलते कि रथ आपका तैयार है, हम जानते हैं कि आप वृंदावन के मूड आने पर आप यहां पर नहीं रोकोगे, इसलिए हम आपके रथ की भी तैयारी करे रखे हैं। तो नारद मुनि जैसे बोलते हैं कि हम आपका रथ तैयार रखे करके, तो तुरंत भगवान कृष्ण रथ की ओर आगे बढ़ते हैं और सारे द्वारकावासी उनको पकड़ पकड़ के उनको रथ के ऊपर बैठाते हैं और फिर भगवान वहीं से रथ के ऊपर बैठ के द्वारा वृंदावन की ओर आ जाते हैं। एक्चुअली दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रथ यात्रा। ये है सेकंड स्टोरी है, हाँ सॉरी इसमें उधर रह गया ग्रुप के बारे में बोला नहीं। जो वृंदावन में फिर आते हैं भगवान, तो जैसे वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि सारे जो गोप गोपी है श्रीमती राधिका है उनका दिव्य अरेंजमेंट चल रहा है और राधा रानी को देखते हैं कि निधुवन में वो मूर्छित अवस्था में है और वहां पर सारे सखियों को मिलते हैं और पूछते हैं कि राधे कहाँ पर, राधे कहाँ पर है। तो राधा रानी के पास आते हैं, राधा रानी पर मूर्छित ऑलमोस्ट डाइंग कंडीशन में पड़े रहते हैं वो। तो फिर वहां पर राधा की बोलते कि हे राधा रानी, मैं आपको बहुत दुख दिया है, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए और आपके चरण को मेरे मथे पर लगाइए। और जैसे ही राधा रानी के चरण लेकर के अपने मस्तक पर स्पर्श करते हैं तो तुरंत भगवान की रूप का एक अलग, भगवान श्री कृष्ण का रूप अलग हो जाता है। उसको बोलते कि महाप्रकाश भाव, क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु उसको बोलते कि कुर्मेर रूप, कुर्म क्या है कछुआ क्या है, पूरा सारे अंग उनका पूरा संकुचित कर लेता है। तो उनका पाव जो है ना अंदर आ जाता है, हाथ सकुड़ जाता है, आंख बड़े बड़े जाते स्टेसी में, तो उसी रूप में वहीं पर खड़े हो जाते हैं। और फिर बलराम जी उनके पीछे पीछे आते हैं और वो भी वृंदावन वासी और इनको देख करके उनका भी रूप ऐसे हो जाता है। और फिर सुभद्रा माई तो उधर है ऑलरेडी वृंदावन में, जैसे ही कृष्ण के इस प्रकार से रूप हुआ तो तुरंत वो भी राधा रानी का स्थिति देख करके उनका भाव में आकर के वो सुभद्रा माई का भी ऐसा रूप हो जाती है। तो जगन्नाथ और बलदेव और सुभद्रा तीनों का जो रूप है वहीं पर श्रीमती राधा रानी सारे गोपियों के संस्पर्श में आकर के ऐसा रूप की प्रकाश हुई है। और वहां पर नारद मुनि फिर बोलते हैं कि ये जो दिव्य सुंदर रूप है, इस सुंदर रूप को हम दर्शन करना चाहते हैं, सारे जगतवासियों को ये महाप्रकाश भाव की राधा भीरव रूप की आप दर्शन दीजिए। तो कृष्ण फिर जब एक्सटर्नल कॉन्शियस में आते हैं कुछ समय के बाद, फिर बोलते कि हे नारद तथास्तु, ऐसे ही होगा, कलयुग ने इस रूप में मैं नीलाचल में सभी दर्शकों को मेरा ये दर्शन दिलवाऊंगा। ये हो गया सेकेंड स्टोरी है भगवान जगन्नाथ जी कैसा क्यों रूप हुआ। थर्ड स्टोरी है आप लोग सब जानते हैं क्या है? द्वारका में जो रोहिणी माता, ये बोलूं क्या, टाइम कितना हो गया, 8:30 लेट हो गया, और थोड़ा भी बोलना था मुझे, लेकिन थर्ड स्टोरी आपको पता है, रुक्मिणी माता जब भी, सॉरी रोहिणी माता जब भी सारे पास टाइम ब्रज के सारे लीला जो सारे रानियों को बताते हैं, तो वहां पर सुभद्रा में गेट कीपर रहते हैं वो सुनते हैं, फिर कृष्ण बलराम आ जाते हैं वो सुनते हैं, वो उनका रूप होती है, तो उनको जैसे ये उनका रूप होते हैं। हम थोड़ा सा 10 मिनट में मैं कह कर दूंगा। आइडेंटिटी ऑफ दारू ब्रह्म जगन्नाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली हमारे लिए। द नेम दारू ब्रह्म मीन्स दैट गॉड एब्सोल्यूट ट्रूथ ब्रह्मन हैज अपीयर्ड इन ए डीटी मेड ऑफ वुड दारू। दिस इज कन्फर्म्ड इन पद्म पुराण, श्लोक है समुद्र तरे तीरे अस्ते श्री पुरुषोत्तम पूर्णानंद मयम ब्रह्म दारू ब्याज शरीर भृत। इसका मतलब होता है कि इन पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी एंड द नॉर्दर्न शोर ऑफ द ओशन रिसाइड्स द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ फुल ऑफ एस्थेटिक ब्लिस। ही हैज अज्यूम्ड ए ट्रांसेंडेंटल बॉडी दैट अपीयर्स वुडन। जगन्नाथ स्वामी इज कॉल्ड दारू ब्रह्म बिकॉज ही इज एब्सोल्यूट ट्रूथ इन वुड दारू एंड बिकॉज ही डिस्ट्रॉयज दारणात द मिजरीज ऑफ मेटेरियल एग्जिस्टेंस। द वर्ड दारू हैज थ्री पार्ट्स। द सिलेबल द इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द एंड डू। द मीन्स टू गिव एंडलेस ब्लिस आनंद। डू मीन्स टू कट अवे इल्यूजन मेटेरियल अटैचमेंट्स सफरिंग्स एंड वेरियस मिजरीज ऑफ द कंडीशन सोल। रू मीन्स टू रिवर्ट टू वंस ओरिजिनल नेचर। इन कंक्लूजन दारू ब्रह्म मीन्स डीटी फॉर्म ऑफ गॉड द सुप्रीम ब्रह्मन। इट मीन्स द सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्ण who cuts away all sufferings and material attachments and then awards one eternal life of endless bliss in spiritual world. He is Lord Jagannath or Daru Brahma. In the age of Kali, Bhagavan Sri Krishna appears in two special forms, Daru Brahma Jagannath and Ganga River, to liberate conditioned souls from the cycle of birth and death. Once in Puri, Gauranga confirmed this point while instructing Sarvam Bhattacharya. Ye verse bolte hain, Daru Jala Rupe Krishna Prakata Samprati Darasana Snane Kare Jivera Mukate Daru Brahma Rupe Sakshat Sri Purushottama Bhagirathi Hana Sakshat Jala Brahma Sama. Mahaprabhu said in this age of Kali, Krishna is manifested in two forms, wood and water. Thus by seeing the wooden form, Jagannath, and by taking bath in the water Ganges, conditioned souls become liberated. Lord Jagannath is directly Supreme Lord himself in the form of wood, and River Ganga is directly Supreme Lord himself in the form of water. There is another reason important here. Why the deities of Kali Yuga have appeared in wood? The murtis of Jagannath, Baldev and Subhadra are carved from neem wood. Brahmins say that neem wood deities can be worshipped by all the four varnas, not only the Brahmanas, all four varna can worship the neem wood. That's why Lord appeared in the deity form of wood. And another thing, the absolute nature of Lord Jagannath. 5 minutes just. Being absolute, Lord Jagannath is identical in person, form and picture and kirtan and all other circumstances. If one thinks that the form of the Lord Jagannath is an idol made of wood, he immediately brings ill fortune into his life. लॉर्ड जगन्नाथ इज सच्चिदानंद विग्रह जस्ट एज बॉडी ऑफ कृष्ण इज सच्चिदानंद. ए प्योर डिवोटी हु नोज द साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉर्ड जगन्नाथ एंड हिज बॉडी. He knows that they are identical just as Krishna and his soul are one and the same. Lord Jagannath is identical with Krishna. Krishna is Atma Swarupa. But in Jagannath Puri, he appears as Daru Brahma, non-moving entity, Stavara Swarupa. Thus Lord Jagannath and Mahaprabhu, although appearing as two, are one because they are both Krishna. Who is one alone, the supreme desire to deliver the entire world meets in both Mahaprabhu and Jagannath. And for that reason also, they are one and the same. To deliver all material contaminated people of the world, the same Krishna has descended in descended in the moving form of a Gaura. Or just 5 minutes. The extraordinary form of Lord Jagannath. Pilgrims in Puri often ask question, why does Lord Jagannath have such an unusual form? The answer is simple. God wants to appear like this, in this most unusual form, to establish religion in this most unusual age of Kali. The Vamandev Sahita and Skanda Puran state that Bhagavan Sri Krishna appear in this covered wooden form out of his independent will and due to the prayer of Lord Brahma. Ultimately, Jagannath Dev exhibits whatever form his devotee wants to see as stated in Skanda Puran. The following story Rohini Devi ka past time, same story hai. More again. ठीक है, अभी टाइम हो गया, अभी और जस्ट एक भक्तों के बारे में बोलना था. भक्तों बस चलाओ लॉर्ड जगन्नाथ रेसिप्रोकल टू हिज डिवोटी एंड प्रोटेक्ट हिज डिवोटी दो जो सरेंडर कंप्लीटली हिज बॉडी माइंड एवरीथिंग शरणागति. भक्तों की पहचान उनकी शरणागति है. तो भगवान उनको तब तक प्रोटेक्ट करते हैं जो पूर्ण तरह से शरणागत है. एक रघु अरीक्षित का मैं स्टोरी बताना चाहता लेकिन अभी तो टाइम हो गया. बताऊं कि बंद कर दो अभी बताऊं? तो लाइट थोड़ा लगाना पड़ेगा. माधव प्रेम प्रभु है क्या? हाँ कैसा है प्रभु? 5 मिनट के लॉन कर दो थोड़ा. 32 है, 40 तक बोल देंगे. तो तब तक मैं प्रेयर से बोल देता हूँ रघु अरीक्षित का. ठीक है, रघु अरीक्षित में बोलता हूँ. भगवान की जगन्नाथ जी का एक बहुत बड़ा भक्त थे, उनका नाम है कृष्ण महापत्र. उनके घर बालेश्वर और मेदिनापुर के बीच में बॉर्डर में आता है. ऑलमोस्ट नाउ डेज इट इज कवर्ड इन वेस्ट बंगाल, पहले उड़ीसा में आता था वो. तो वहां पर एक भक्त थे कृष्ण महापत्र, वो बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे और भगवान जगन्नाथ के वो बड़े भक्त भी थे. उनकी एक ही बेटा था, उनका नाम है रघुनाथ रघु. वो जन्म से ही भगवान जगन्नाथ के पूरा उनका अटैचमेंट है, क्योंकि पिता के पास इतना पैसा था वो सारे पैसा क्या करते थे, दान में दे देते थे, सारे पैसा दान में दे देते थे और पूरी तरह से भगवान की सेवा पूजा इसमें पूरा उनका ध्यान है. तो उनका पिता सोचे कि अभी पुत्र का शादी का विवाह की आयोजन करते हैं. तो उन्होंने कहा अच्छा, लड़की को ढूंढे और शादी के लिए फिक्स कर दिया कि यहां पर शादी होगा। वो बेटे का नाम था क्या, क्या नाम था बेटी का नाम, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जो है पूरी तरह से अन्नपूर्णा यानी लक्ष्मी देवी, पूर्व लक्ष्मी देवी की वजह से उनके सब सारे गुण संपन्न थे, पूरा भगवान के प्रति उनका बहुत डिवोशन था। लेकिन उनका शादी नहीं हुआ था, जस्ट अरेंजमेंट हुआ था, जैसे बाल्यकाल में हुआ था ना, इसका इनके साथ फिक्स हो जाते हैं बाल्य विवाह जैसे, शादी लेकिन हुआ नहीं था। लेकिन उससे पहले उनकी रघु के जो पिता माता थे वो शरीर छोड़ दिए। जब वो चले गए तो रघु सोचा कि मेरा जीवन में और कौन रहा, कोई तो है ही नहीं अभी, तो क्या करते हैं अभी। वो भी इसी प्रकार से दान, कोई भी कुछ मांगता था उनको इतना दान देते, इतना दान देते, सब कुछ बेच डाले, उनका घर परिवार घर जितना भी सब धन था सब दान में दे दिया। लेकिन मेरे पास अभी रहने के लिए भी कुछ नहीं है, तो क्या करो, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो उन्हें सोचा कि अरे भगवान जगन्नाथ जी सबकी सुरक्षा करते हैं, चलो वहीं जाता हूं उनकी सेवा करता हूं। तो ऐसा सोच करके जगन्नाथपुरी में आ गए और वहां पर जो बड़दंड में यानी ग्रांट रोड में जो भिखारी बैठते वहां पर बैठ के भिक्षा मांगने लगे और जो मिलता था उससे अपना अपना जीवन निर्वाह करते थे और भगवान की सेवा पूजा में रत थे। लेकिन जब उनका जो लड़की के जो परिवार लोग हैं उनका नाम है बसु महापत्र, उनको जब ये खबर मिली कि हमारा लड़का जिसके साथ शादी होने का तय हुआ था वो तो अभी पूरा पूरी तरह से भिखारी बन गया, वो तो जाके भीख मांग रहे हैं जगन्नाथ के मंदिर में, और ये अपना बड़े घर के बेटे हैं वो कैसे दे सकते हैं उनको शादी में। तो बोले कि ये शादी संभव नहीं है, ये शादी संभव नहीं है। तो फिर उनको क्या किया कि बेटे को हम कैसे और दूसरे के साथ शादी दे देते हैं। तो पिताजी दूसरे के साथ शादी के लिए ढूंढ लिए कि ये लड़के के साथ शादी करना है करके। जैसे खबर उसका बेटी को पता चले, क्यों बेटी जो है क्योंकि उनको पहले से बता के रखे थे आपका ये पति है करके, तो पूरी तरह से अपने पति के ओर अपना ध्यान चले गए, तो पतिव्रता थे, भले शादी नहीं हुई थी लेकिन उनका मन जो है उसी पति के प्रति फिक्स हो गया था। तो बोले कि मैं अपने मन को किसी के पास ऑलरेडी दे चुका हूं, मैं और किसी साथ कैसे शादी कर सकता हूं, ये संभव नहीं मेरे लिए। तो उन्होंने के पत्र लिखे किसके पास, रघु के लिए, कि आप अगर 10 दिन के अंदर यहां पर नहीं पहुंचे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो ऐसा लेटर किसी उसी गांव से कोई व्यक्ति जा रहे थे तो उसके हाथ में दे दिए जगन्नाथपुरी के लिए। तो फिर वो पुरी में वो व्यक्ति आए, वो रघु को मिल करके उसको पत्र दिए, पत्र पढ़कर रघु देखा कि अरे जब ये लेटर उन्होंने लिखा था ऑलरेडी 10 दिन क्रॉस हो चुका है, तो अभी मैं चल के कैसे जाके पहुंचो और कैसे, तो आत्महत्या कर लेगी। तो तुरंत आकर जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगे कि भगवान बचाना है तो आप ही बता सकते हैं, बचा सकते हैं, लेकिन मैं कैसे क्या कर सकता हूं, अभी तो चल के भी जाऊंगा तो भी 10 दिन लग गया मेरे को पहुंचने के लिए, तब तो क्या होगा, आप ही जो कुछ है आप ही कीजिए। तो जगन्नाथ जी और यहां पर आत्महत्या करने के लिए प्रण भी ले लिया था, अभी सती नारी है जो भी बोलेगा वही करेगी। तो 10 दिन हो रहा था, जस्ट आखिर दिन थे, तो आखिर दिन रात को ही 10 दिन का नाइट होकर के अगले दिन 11 बजे होने वाला है, तो अग्नि में दास मतलब कि अपने सुसाइड करने वाले हैं। तो फिर जगन्नाथ जी क्या किए, एक बेताल को बुलाया, अपने बेताल का स्टोरी सुना, बेताल को बुला के फिर इसको भेजते हैं, मैं तो बेताल बोलते हैं ना, विक्रम बेताल स्टोरी से ऐसा ही कोई स्टोरी है। तो हाँ, तो फिर जगन्नाथ जी इसको बुलाते हैं, तो तुरंत प्रकट होते बोलते कि ये जो मेरा भक्त रघु है उसको तुम्हें उनके घर पर पहुंचाना है, उनका किसका ससुराल में पहुंचाना है। तो तुरंत बेताल ने उसको उठा करके रघु को जहां पर रहते थे रघु से रघु को उठा करके उसी दिन रात को उठा करके सीधा अपना पति की पत्नी के घर में, और सुबह उठ करके देखा तुम्हें कुछ अलग जगह पर रहूं, तो बोला कि ये तो मेरा पत्नी का घर है। तो पत्नी से जाके मिले और ललिता जो है सॉरी अन्नपूर्णा उनका दर्शन, अपना पति तो वो दर्शन करके खुश हो गए और बोले कि आप इतने अवस्था में, बोले कि क्या करें अभी, हमारे पास कुछ नहीं है, मैं जो भी उधर भी जो भी भिक्षा करके जो भी मिलता है उसमें अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। बोले कि आप मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो मेरा पिता माता और दूसरे कहीं शादी करवा देंगे। बोले कि लेकिन आप मेरे साथ आओगे तो कैसे रहोगे फिर, मैं तो अपना भिक्षा करके अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। तो उनका पत्नी बोले कि मैं भी उसमें अपना आप जैसे जी रहे मैं भी ऐसे भिक्षा करके अपना जीवन निर्वाह करूंगा, मेरा पति जो भी करेगा मैं भी ऐसे करूंगे। तो फिर वापस रास्ते में जब आ रहे थे तब जिस लड़के के साथ उनका शादी की प्रस्ताव चल रहे होने वाला था, दूसरे लड़के के साथ जो प्रस्ताव चल रहा था, उसको खबर मिल गया कि जो जिसके साथ पहला शादी की तय हुई थी वो आके लड़की को लेके जा रहे हैं। तो तुरंत उसने अपना सेना भेज करके उसको मारने के लिए षड्यंत्र बनाया। तो फिर तुरंत वहां से फिर नहीं नहीं उससे पहले और एक होता है स्टोरी, अक्षय भगवान कैसे जनक उसको प्रोटेक्ट करता है। उसी दिन जब उनके घर वालों को पता चलता है, लड़की या घर वालों को पता चलता है कि अरे ये तो रघु तो वही उसका इधर आ गया और इसका सिचुएशन देख करके इतना खराब, उनको लगा कि इसका शादी देख करके हमारा लड़की कहां से सुखी रह पाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको कैसे भी षड्यंत्र बना करके उसको मार देते हैं यहां पर। तो मारने का षड्यंत्र बनाया। जब बना रहे थे तो क्या किया उन्होंने, बोले कि अन्नपूर्णा जो है वो खाना परोसने जाएगा और इनका माँ बाप ने उसमें क्या किए, पहले भोग बनाए, वो भोग का जगन्नाथ जी को अर्पण किए और उसको प्रसाद लेकर के अन्नपूर्णा के दिए, बोले कि आप जाकर अपना पति को खिलाओ। और अन्नपूर्णा को एक बात पता था कि इसमें जहर मिला हुआ है। और उसमें जब भोग प्रसाद लेकर के राघु को उन्होंने दिया है, उसके नीचे के छोटा सा कागज में लिख कर रख दिया था कि यहां पर इसमें जहर मिला गया है, आप इसको मत खाइए, क्योंकि मेरा निर्देश है कि आपको देना है, नहीं दूंगा तो मेरे को फिर डांट पड़ेगी, तो मुझे देना है, लेकिन मैं आपको ये संकेत दे रहा हूं आप इसको मत खाइए। तो जैसे ही वो पत्र पढ़ा रघु ने, बोला कि ये कैसा संभव है, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्यों भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद है और ये जहर मेरे भगवान को उन्होंने अर्पण किया है, मेरा भगवान ने खाया है, तो मैं उनके प्रसाद कैसे नहीं खा सकता हूं, ये महाप्रसाद पर अवज्ञा हो जाएगी, और मुझे कोई अगर अर्पण कर रहा है महाप्रसाद के रूप में मेरे को भेंट दे रहा है तो उसको स्वीकार करना मेरा भी कर्तव्य है। तो उसको बोलेगी जो होगा देखा जाएगा, और जगन्नाथ जी बचाना चाहेंगे तो बचाएंगे, नहीं तो जो उनकी इच्छा है वही करेंगे। तो तुरंत फिर जैसे वो खाते हैं तो तुरंत खाकर मूर्छित होकर के वहीं पर मर जाते हैं। और उनको जब उनका घर वालों को सबको पता चलता कि रघु भी मर गया तो तुरंत बोलते कि ठीक है अच्छा हो गया। अगले दिन सुबह उनको जला देते हैं और अपना बेटी को दूसरे जगह पर शादी करवा सकते हैं। तो जैसे ही जलाने के अगले दिन प्लान बन रहे थे कि उसको लाश लेकर के सब लेकर के उनको जलाना है, तो तुरंत वहीं पर अन्नपूर्णा क्या करती है, बोलते कि अगर मेरे पति को इन लोग जलाएंगे आज सती नारी मुझे उनकी अग्नि में झांस दे करके अपना शरीर को भी त्याग करना है। तो उन्होंने प्रण ले लिया कि अगर मेरे पति ने अगर मर जाते हैं तो उनकी अग्नि में झांस देना मेरा कर्तव्य है, तो मैं भी शपथ लेता हूं कि मैं भी उनका अग्नि में झांस दे दूंगा। तो तुरंत ऐसा प्रण लेकर के वो मतलब कि पति के पास ही बैठ जाती है पूरा। तो फिर जगन्नाथ जी बोलते कि अरे बड़ा ये हो गया, एक साथ दो दो भक्तों की हत्या मेरे को ही आएगा, अल्टीमेटली मेरे को ही आएगा कि मेरे भक्त ने मेरे लिए आत्महत्या किया है। तो जगन्नाथ जी फिर वहीं पर आते प्रकट होते हैं और उनका जो शरीर को आके स्पर्श करते, रघु के शरीर को आके स्पर्श करते हैं और तुरंत रघु उठ जाते हैं, अपना जीवित होकर उठते हैं। और वहां पर उनका घर के सारे परिवार को जैसे पता चलता है कि रघु जीवित हो गए और उनका षड्यंत्र जो सक्सेस हुआ नहीं, तो उन्होंने सारे स्टोरी बताते हैं कि जो भी मेरे को उन्होंने बचाया भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से मैं जीवित रहा हूं। और जब उनको पता चलता है कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया, तुरंत आकर माफी मांगते हैं, बोलता है ठीक है आप इतना जनरस कि आप इतना भड़बकते हैं, हाँ आपने जो कुछ आपके प्रति हम जो कुछ भी किया है माफ कर दीजिएगा। तो फिर बोलते कि नहीं नहीं आपका इसमें कोई गलती नहीं, रघु बोलते कि आपका इसमें कोई गलती नहीं है, ये मेरे पूर्वजन्म के कर्म में किस पूर्वजन्म में ऐसा कर्म किसके प्रति किया होगा भगवान में, इसलिए मेरे को परीक्षा दे रहे, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। और अपनी पत्नी को बोलते है कि एक्चुअली मैं भी उनसे शादी करना नहीं चाहता हूँ, आप और किसी और शादी करवा सकते हैं तो करवा दीजिए, मुझे कोई ये नहीं है। तो फिर ऐसे बोलते हैं, तो फिर उनका पत्नी बोलते है कि नहीं नहीं मैं आपको छोड़ के नहीं रह सकते, मैं आपके साथ में आऊंगा। तो घर वाला देख करके अपना बेटे का इतना जीत देख करके फिर बोलते कि ठीक है। तो फिर जो वापस लेकर के आते हैं पूरी की ओर, तो फिर लड़के लोगों को पता चलता है, वो भी मारने के लिए प्लान बनाते हैं, फिर उन्होंने सेना भेजते हैं फिर उसको मारने के लिए। तो फिर वो भी प्रार्थना करते हैं, जैसे ही देखते कि रघु और उसका पति देखते कि हमारे पीछे सेना आ रहे हमको मारने के लिए, तो तुरंत वहीं पर बैठ करके भगवान जगन्नाथ जी को स्मरण करते हैं। और जगन्नाथ जी वहां पर काले घोड़े और सफेद घोड़े में प्रकट होते हैं और फिर सारे सेना को वहां से भगाते हैं, जितना सेना जो आक्रमण के लिए उनके प्रति आते हैं उनको वहीं से भगाते हैं। फिर बाद में इस तरह से वो फिर अरे रघु को पता चलता है कि जगन्नाथ जी स्वयं आकर हमको ये रक्षा किया है। तो फिर उसके बाद पुरी में आते हैं, पुरी में ऐसे एक ही परीक्षा नहीं है, इसके ऊपर और बहुत सारे परीक्षा हुआ है। लास्ट तो भगवान जगन्नाथ स्वयं, बाकी तो बाकी का जो प्रॉब्लम था अपना परिवार लोग और बाह्य लोग, यहां पर अभी स्वयं भगवान जगन्नाथ जी आते हैं किसको, रघु की परीक्षा के लिए। क्योंकि रघु का उसके बाद परिवार अच्छा से चल रहा है, अपना सेवा पूजा कर रहे ये कर रहे सब कुछ, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी स्वयं आते हैं और भगवान जी को मांगते हैं, सॉरी भगवान रघु को मांगते हैं कि रघु तुम्हारा जो इतना मेरे भगवान के प्रति भक्ति है, क्या भक्ति का ये नहीं है कि आप सब कुछ पूर्ण शरणागति से भगवान को समर्पित है। बोले कि मैं आपका पत्नी को चाहता हूं, क्या मेरे को दे सकते हैं। तो फिर भगवान ये रघु बोलते कि क्या भजन भजन है भक्ति में ठाकुर क्या, मारो भी नहीं मानस देहोगे वो जो कि छुमोर और पीली तुआ पदे नंद किशोर। ये भगवान ये तो सब कुछ आपका है, पति पत्नी शरीर सब कुछ आपका है, वो आपके ही लिए से आपके लिए, कोई भी अगर दान मांगते हैं तो इसके लिए देने के लिए मैं हकदार हूं। तो उसको जब दान में देते अपने पत्नी को, तो फिर भगवान स्वयं जगन्नाथ अपने रूप में प्रकट होते कि मैं समझ गया आपका कितना शरणागति है। तो फिर भक्त और भगवान को यहाँ पर मिलान होता है। उसके बाद और दो तीन भी पास्ट टाइम है, मैं स्किप किया हूँ, ये तो लास्ट पास्ट टाइम है। तो इस तरह प्रकार से रघु अरक्षित और ये जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा निविड़ संपर्क था, निविड़ संबंध था, जिसको से हर स्टेज में उनको रक्षा किया। जय श्री श्री भक्त वत्सल श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माए की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि समवेत गौर भक्त वृंद की जय। सॉरी फॉर माई लेट, और कोई गलती हो रहेगा तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। अरे थैंक यू सो मच। क्या क्या हाँ चलेगा इसमें ललित माधव है और बाकी दो दिन पास टाइम था
सुनेगा ना कल भी तब बता दीजिए क्वेश्चन
लीला कथा की है
सुन लेंगे।
काहे नीला सही लगाने वाला था
ये काहे नीला सही लगाना चाहिए था।
चलो आपकी पसंद के लगाता हूँ,
आ जाओ मेरे साथ आ जाओ, तुझे जाते जाते गाएंगे।
उनको थोड़ा मदद करना पड़ा किसान
चलो चलो प्रभु चलो गाओ अपनी पसंद।